ओम शांति। कोई भी बीमारी का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्या है सबसे अच्छा उपाय?
परहेज करना।
करना। और सबसे अच्छा उपाय क्या है कोई भी बीमारी का? सोचो सोचो। हाँ, मेडिसिन नहीं लेना। अच्छा,
और सही डॉक्टर के पास जाना।
सही डॉक्टर के पास जाना। और सबसे अच्छा उपाय, सही डॉक्टर से भी क्या उपाय कराएंगे?
मेडिटेशन।
मेडिटेशन करेंगे। और जो कहते हैं सबसे अच्छा उपाय है कोई भी बीमारी का, उसके मूल को ढूंढ के उसे समाप्त करो, है ना। मूल कारण को समझ लो, उसे पहचान लो, और उसे, जैसे इन्फेक्शन है, ये समझ में आ गया कि वायरस से बीमारी हुई, उस वायरस को खत्म कर दो, बीमारी सदा के लिए खत्म हो गई। तो ऐसे ही क्रोध का भी सबसे अच्छा इलाज है कि उसके मूल कारण को पहचानना और उस कारण का निवारण करना। तो आज हम कुछ एक क्रोध के कारणों को समझेंगे। देखा गया है कि करीब 30% जो क्रोध है, 30% लोगों को क्रोध इसलिए आता है क्योंकि लोग आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। ठीक है, देखो आप भी सभी हाँ हाँ कह रहे हैं, मतलब सही है ये कि हमारी इच्छा के विपरीत जब कोई बात होती है तो हमें क्रोध आता है। तो अभी इस बात को थोड़ा सा हम समझे, क्योंकि कारण को समाप्त भी करना है। अभी कारण तो जान रहे हैं, परंतु वह समाप्त कैसे होगा? तो कुछ एक विचारों को आप ठीक से समझेंगे तो इस बात से ऊपर उठ सकेंगे। जैसे मैंने कहा भी कि हमको इन चीजों से ऊपर उठना है। तो हम सब जानते हैं कि भी इस दुनिया में हम विशेष व्यक्ति है, आप जैसा चेहरा और किसी का भी नहीं है। तो जब इतनी सारी हमारी विशेषता है तो हम कैसे चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे हमारी इच्छा अनुसार करें? पति या पत्नी मैं चाहता हूं ऐसे ही काम करे, क्योंकि हम है ही डिफरेंट वास्तव में। और ये भी देखो कि अगर 50% भी लोग हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे तो हमें खुशी होनी चाहिए। दूसरी एक बात कहा भी गया है कि ये सृष्टि एक नाटक है, शेक्सपियर ने भी कहा है, एक सीरियल है। सीरियल में सभी एक जैसा पार्ट बजाने लगे तो क्या होगा? कोई मजा ही नहीं आएगा, चैनल कोई चेंज कर देंगे, है ना। तो इसलिए यह जीवन रूपी सीरियल में भी सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होता रहे तो जीवन का कोई मजा ही नहीं है वास्तव में। दूसरा ये भी कहा गया है कि हरेक को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। और सचमुच तो क्या होना चाहिए कि जब कोई आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करता है या आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य कर रहा है तो क्रोध आने के बदले आपको आनंद आना चाहिए। देखो सीरियल में भी जब कोई अलग अलग रूप से लोग काम करते हैं, डिस्टर्बेंस होता है तो हमें मजा आता है। तो ये जीवन रूपी सीरियल में भी जब कोई आपकी इच्छा के विपरीत कार्य करे तो उस डिफरेंस का आनंद लो। चलो आनंद नहीं ले सकते कोई बात नहीं, कम से कम उसको स्वीकार तो करो। तो इन बातों पर आप सोचना, तो यह कारण से भी आप ऊपर उठ सकेंगे। और जो दूसरा कारण है सूक्ष्म है, शायद तुरंत समझ में नहीं आता है, वह है कि कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए गुस्सा करते हैं। देखो मैंने आपको सुनाया गुस्से के बहुत सारे नुकसान है, परंतु एक फायदा भी है। क्या फायदा है? कि क्रोध से लोग आपसे डरते हैं, अगर आपसे डरते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार करते हैं। परंतु यह सोचो कि भी ये डर है वह सदा के लिए नहीं रह सकता है। क्रोध से भले बच्चे आपकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, सबऑर्डिनेट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय करेंगे, ज्यादा समय आपकी इच्छा अनुसार होना नहीं है। उल्टा एक तो प्रेशर से करेंगे, सच्चे मन से नहीं करेंगे, और थोड़ा टाइम ही वह रिजल्ट मिल सकता है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि कुछ लोगों का ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसको इंग्लिश में कहते थिंग मस्ट गो माय वे, जैसे मैं कहूं ना वैसा ही होना चाहिए, एक पर्सनालिटी हो जाती है। और यह बचपन से यह पर्सनालिटी हो गई होती कुछ लोगों की। हाँ, किसकी है ऐसी पर्सनालिटी कि थिंग मस्ट गो माय वे है, आपको ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ देखो, है ना, जिसको भी ऐसा पूछना, क्योंकि भी हो नहीं सकता है। हाँ, थिंग चीजें मेरी इच्छा अनुसार हमेशा होनी नहीं है। और ये पर्सनालिटी कैसे पढ़ती है कि बचपन में, हाँ, आपने पानी मांगा तो माँ बाप ने दूध दे दिया आपको, हाँ, जो चाहिए तुरंत वो चीजें हाजिर कर दी, तो धीरे धीरे वही आदत हो गई, वही संस्कार हो गए। बड़े होने के बाद भी आप सोचते हैं मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। इस विषय में भी अपने आप को समझाओ कि माता पिता की साइकोलॉजी डिफरेंट थी, मेरे प्रति उनका जो नजरिया था वह डिफरेंट था। आज मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे, उनका नजरिया डिफरेंट है, वो माता पिता नहीं है, तो वह मैं जैसे चाहता हूं वैसा ही हमेशा नहीं करेंगे, कभी कभार कुछ डिफरेंट वे में भी करेंगे, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये जो अवस्था है थिंग मस्ट गो माय वे, वो वास्तव में रुण्य में पानी के जैसा है। डेजर्ट में मिराज होता है ना, जो रियल नहीं है, पानी दिखाई दे रहा है लेकिन सचमुच पानी तो वहां नहीं है, तो वैसी ही स्थिति है। उसके पीछे मैं भागूंगा तो कभी पानी मिलना नहीं है मुझे, तो ऐसे ही यह मनोदशा में बनाया रखूंगा तो जीवन में कभी भी मुझे शांति नहीं मिलेगी, वो डिस्टर्बेंस और क्रोध चलता ही रहेगा। इससे अच्छा तो मैं स्वीकार करूं कि हमेशा यह संभव नहीं है, उल्टा औरों की इच्छा के अनुसार मुझे भी कार्य करना चाहिए, तब दूसरों को भी मैं खुशी दे सकूंगा। ऐसी कुछ एक बातें अच्छी तरह से समझाओ तो भी यह जो मनोभूमिका है उससे हम उपराम उठ सकेंगे। और भी कुछ कारण है, कुछ लोग हैं जो झूठ को सहन नहीं कर सकते, जब भी कोई झूठ बोलेगा उनको जो और सब कुछ सहन कर लेंगे शायद, लेकिन किसी ने छोटा सा भी झूठ बोला तो तुरंत वो गुस्से में आ जाएंगे। तो भले ये बात ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है कि भी झूठ को सहन नहीं करना चाहिए, परंतु इस पर आप थोड़ा सा सोचिए कि गुस्सा करने से क्या वह सच बोलेगा, उल्टा आप गुस्सा करेंगे तो बच्चे ज्यादा झूठ बोलेंगे, डर के मारे भी वह ज्यादा झूठ बोलेंगे। अगर हम झूठ को सहन करेंगे तो उनमें हिम्मत आएगी और वह सच बोलने लगेंगे। गुस्सा करने से जो हम परिणाम चाहते हैं वह परिणाम मिलता ही नहीं है। और भी एक बात, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सच बोले तो गुस्सा करने से परिणाम नहीं मिलेगा, उल्टा आप खुद सच बोलो। हम क्या समझाते हैं वह बच्चे नहीं सीखते हैं, हम क्या करते हैं उससे बच्चे सीखते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन था, उसने अपने बेटे को कहा कि वो हरिलाल आए ना तो उसको कह देना कि पापा घर में नहीं है, वो मेरा सर खाएगा। तो बच्चा भी बड़ा शरारती था, हिम्मत वाला भी था, तो हरिलाल आया तो उसने कहा कि पापा ने कहा है कि हरिलाल आए तो कह देना कि पापा घर में नहीं है, वो मेरा सर खाएगा। तो हरिलाल तो बड़ा गुस्से में आ गया, ऊपर गया कि क्या समझते हो। तो जब वो वापस गया तो बच्चा भी हिम्मत वाला था, हाँ, पिता के सामने आके खड़ा हो गया, कहा देखो आप ही सिखाते हो ना सच बोलना चाहिए, तो मैंने सच बोला, आप कहो तो मुझे सच बोलने की भले सजा दो, है ना। तो पिता की भी आंखें खुल गई, है ना, उसको सजा देने के बदले गले लगा दिया, कहा बिल्कुल ठीक है, हाँ तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो ऐसे आप चाहते हो तो आप खुद सच बोलो, ऑटोमेटिक बच्चे भी उसको सीखेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय को सहन नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय होता है तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये बात भी सच है कि हम अन्याय को सहन न करें, परंतु क्रोध करने से न्याय नहीं मिलने वाला है। भले गांधी जी की तरह सत्याग्रह भी भले करो, उसके अन्याय के सामने आवाज उठाओ, हाँ लोगों को भी इकट्ठा करो, भले कोई एसोसिएशन बना दो उस अन्याय के अगेंस्ट, परंतु क्रोध करने से आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक्शन जरूर लेनी है, परंतु क्रोध में तो उल्टा हम एक्शन नहीं लेते हैं। क्रोध वह एक पैरालिसिस जैसा है, साइकोलॉजिकली आप बस कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, परंतु एक्शन तो ले ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए वह भी परिणाम में। और क्रोध के सूक्ष्म कारण भी है कुछ। क्यों पता है हमको ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि उसके छोटे छोटे फायदे भी हैं। कई बार क्या होता है, आप किसी के साथ चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा करते हैं, थोड़े समय के बाद आपको पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति की जीत हो रही है, आपकी हार हो रही है, तो उसी समय आप गुस्से में आ जाते हैं, ताकि चर्चा वहीं स्टॉप हो जाती और आपको हार को स्वीकार करनी नहीं पड़ती है। तो एक छोटा सा फायदा है, परंतु अपने आप को यह समझाओ कि इससे तो अच्छा है हार को स्वीकार करना। क्रोध करके वहां हम डिस्टर्बेंस निर्माण करें तो मैं अपने लॉजिक को, जो मेरा तर्क है, मेरी जो आर्ग्यूमेंट करने की कैपेसिटी है, वो आर्ग्यूमेंट करने की कैपेसिटी को मैं कभी भी नहीं बढ़ाऊंगा, और मैं मेरी जो तर्क की कैपेसिटी है, मेरे में जो पावर है डिस्कशन की, वो खत्म हो जाएगी। उससे तो अच्छा है कि एक बार मैं हार को स्वीकार करूं और फिर अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करूं कि फ्यूचर में जब भी चर्चा हो तो उसमें मुझे जीत प्राप्त हो। और भी एक छोटा सा कारण है कि कई बार आपको कोई काम दिया गया है कि 8 दिन के बाद ये काम कर देना है, 7 दिन तक आपने वो काम नहीं किया है, तो क्या होता है, 7वें दिन ही आप एकदम गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको बहाना मिल जाता है कि देखो तुमने गुस्सा दिलाया ना, इसलिए मैं वो काम नहीं कर सका। आपको एक बहाना, कारण मिल जाता है, तो ये भी अच्छा नहीं है। कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के लिए एक बहाने के रूप में हम क्रोध का उपयोग करते हैं, तो वह भी सचमुच देखो तो अच्छा नहीं है। अच्छा तो है कि हम स्वीकार करें कि देखो मैंने ये काम नहीं किया, मैं उसको पोस्टपोन करता रहा, आगे चल करके ये कार्य को मैं अच्छी तरह से करूंगा। हाँ, थोड़ा अंतर्मुखी होकर के इस बात को आप जज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये मिल जाएगा कि मुझे इस कारण से क्रोध आता है। और एक बात है कि किसको ज्यादा गुस्सा आता है, कि जो लोग जीवन से असंतुष्ट है ना, उनको ज्यादा गुस्सा आता है, जिनके जीवन में संतोष है उनको भी इतना गुस्सा नहीं आता है। और एक कारण है कि जिनको पूरी नींद नहीं मिलती है ना, उनको भी गुस्सा आता है। आज कहीं कहते 30-40% को अच्छी नींद नहीं आती, तो किसी दिन आपको समझो पूरी नींद नहीं आई तो दूसरे दिन सारा समय चिड़चिड़ रहेगा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो पक्का कर लो कि भी आज भले मुझे नींद कम है, अभी मैं काम में आता हूं, परिवार का काम कर रहा हूं, ऑफिस गया हूं, लेकिन उल्टा थोड़ा शांत रहूंगा। जब भी बीच में रहे तो शांति से, चाहे तो भले झपकी मार लूंगा, परंतु मुझे इरिटेट नहीं होना है। जो व्यक्ति भूखे है, जब आपको भूख भी लगी है तब भी कई बार गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो ऐसी स्थिति हो तो सोचना है जल्दी से कुछ खा लूं, इरिटेशन को व्यक्त करने के बदले मैं कुछ खा लूं, तो ये कुछ एक कारण है ना। अभी आप खुद सोचो कि इनमें से मेरे लिए कौन सा कारण है, आप पक्का अंदर में सोचिए। हाँ, और भी एक होता है, कई बार इसमें कोई भी बात ना हो, कुछ लोग कहते हैं कि कोई इसमें से कोई कारण नहीं, परंतु कई बार क्रोध है वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम देते हैं ना, ऐसे ही क्रोध का भी हम दिमाग को प्रोग्राम देते हैं। आप पहले से ही सोचते हैं कि वो सबॉर्डिनेट अगर ऐसी गलती करेगा ना तो मैं ऐसे उसको डांटूंगा, है ना, मेरा बेटा यह करेगा ना तो मैं उसको ऐसे सुनाऊंगा। ऐसे आप एक बार नहीं, 10 बार 20 बार आपने सोचा होता है कि ये परिस्थिति कोई एक काम ऐसा करेगा तो मैं ऐसे गुस्सा करूंगा, और फिर जब वो आए बस शुरुआत ही आप भटक जाते, अंदर से गुस्सा आ जाता है, बल्ब नहीं भी हुआ उस परिस्थिति के नजदीक भी गए आपको गुस्सा आ गया। तो ऐसे प्री प्रोग्राम्ड एंगर भी होता है। तो अब ये कारण को एक तो अच्छे से समझो, एक दिन की बात नहीं, अंदर में आप जांच करो सचमुच, आप खुद देखो कि पिछले एक साल में आपको कब कब क्रोध आया, जब जब पिछले एक साल में गुस्सा आया तब उसका मूल क्या था, और प्रामाणिकता से स्वीकार करो। इसमें कई बातें हैं ना, हम स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि इसको बताने की जरूरत नहीं, आपको अपनी तरह सीमित रखना है, परंतु ऑनेस्टली उसको स्वीकार करो कि मुझे इस समय कारण आया, इस बात को लेकर के मुझे गुस्सा आया, रवि उसका निवारण क्या हो सकता है, रवि पॉजिटिव प्रोग्राम भी अपने आप को दो, लिखो भी चाहिए तो, है ना, लिखेंगे तो भी आपको अंदर में भी जो मूल कारण है वह बाहर आ सकता है। और यह करने के लिए एक चीज तो चाहिए जिसको कहेंगे अवेयरनेस, क्योंकि क्रोध आने के बाद तो बड़ा मुश्किल है, उससे पहले जब वो शुरू आती है उस समय हम कुछ करें तो पॉसिबल है, तो इसलिए जब क्रोध की शुरुआत होती है तब ही उसे हम पहचानना सीख जाए तो विजय प्राप्त करना सहज है, तो इसलिए हमें अवेयरनेस को जागृत करना होगा। कहेंगे कि सजग बन जाओ, है ना, सजगता को धारण करना है, है ना, कैसे सजग हो सकते हैं, देखिए हाथ को ऐसे रखिए, हाँ एकदम नजदीक रखिए, देखो ये सबसे सरल विधि है कि कैसे सजगता को हम लाए, एकदम नजदीक, हाँ आंखें बंद करिए और ये सोचिए हाथों के बीच में क्या हो रहा है, हाथों को घुमाइए धीरे धीरे, सर्कुलर मूवमेंट करिए, जो कुछ भी हो रहा है उसको फील करिए, हाथों के बीच में जो हो रहा है उसको फील करिए, दूर ले जाइए नजदीक लाइए, दूर ले जाइए नजदीक लाइए, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी में खो गए, हाँ क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, एक दूसरे की और हाथ खींचे जा रहे हैं, और कुछ ना, जैसे कई लोग कहते भी करंट फील हो रहा है, और तो कहेंगे कि भाई जैसे हाथ गर्म हो रहे हैं, क्या ठंडक का भी फीलिंग हो सकती है, कोई ना कोई ये जो फीलिंग होती है वो आपकी अवेयर है, सूक्ष्म बात ना, देखो अभी मैंने कहा ये तो हमेशा होता है कि मैंने कहा तो आपका इन चीजों के प्रति ध्यान गया, तो ऐसे ही जीवन में भी अवेयरनेस को लाओ, बहुत बड़ी बात है, न केवल क्रोध मुक्ति की, बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होगा अगर इतना भी कर लो, हाँ सवेरे से रात तक अभी भी आप बैठे हो तो सचमुच जागृत हो जाओ कि भी क्या हो रहा है, हाँ क्या फीलिंग आती है, कैसे बैठे हैं, ऐसे आप हर बात में अगर जागृति को लाते जाएंगे तो क्रोध की शुरुआत भी होगी ना आपको समझ में आ जाएगा, वो मूल तक भी पहुंच पाएंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर या बहाने बताएंगे क्योंकि क्रोध अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम भी क्या करते हैं उसके प्रति कोई तर्क ढूंढ निकालते हैं कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, वो गलत है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो ये जागृति को आप धारण करेंगे तो एक्सेप्ट करने लगे, और यह सजगता को धारण करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बन करके एक तो यह करना है कि अपने ही शरीर की जो संवेदना है ना उसको भी फील करो, कहते कि आज हम चंद्र तक गए और वापस आए परंतु हम एक इंच भी अपने अंदर नहीं जा पाते हैं, अंतर्मुखी बनने में क्या करना है कि आप थोड़ा अपने शरीर की जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को भी अनुभव करो, उनको भी फील करो, एक अच्छी विधि भी इसमें सारा ध्यान होता है कि विपश्यना ध्यान है कि जिसमें बताते कि सर से लेके पैर तक जो संवेदना हो रहे हैं उसी को बस साक्षी भाव से देखो, जो हो रहा है दर्द हो रहा है तो भी उसको साक्षी भाव से देखो, अच्छी फीलिंग हो रही है उसको साक्षी भाव से देखो, पैर से सर तक भी देखो, तो इससे क्या फायदा है, धीरे धीरे हम अंतर्मुखी होने लगते हैं, है ना, हमें अपना ही कारण मिल जाता है, कहते हैं कि भी औरों का दिया हुआ जो ज्ञान है ना वो लंबा नहीं टिकता है, परंतु जो ज्ञान आपको स्वयं रियलाइज हुआ है, स्वयं प्रेरणा से जो आपको संवाद समझ में आई है, वो जीवन भर टिकती है। तो अवेयरनेस से यह फायदा हो सकता है कि आपको स्वयं पता चलेगा कि आपके क्रोध का मूल कारण क्या है, और फिर उस पर आप विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। और ये ऑटोमेटिक अंतर्मन की यात्रा होगी, अवेयरनेस से सचमुच अंतर्मन की यात्रा होगी, और जीवन का हम पूरा आनंद ले सकेंगे। ध्यान भी क्यों करना है, क्योंकि ध्यान करेंगे तो जो जीवन का पूरा आनंद हमें मिलना चाहिए, जो पूरी खुशी प्राप्त होनी चाहिए, वो पूरी खुशी प्राप्त होगी। आज देखो जो हम जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं 1% भी नहीं है सचमुच, जो रियल है जीवन का आनंद उसका सचमुच 1-2% भी हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जरा सोचो, हाँ 10% भी आप प्राप्त कर लो तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ 10 गुना ज्यादा खुशी होगी, हाँ 10 गुना ज्यादा आपको आनंद जीवन में मिलेगा, शांति जीवन में मिलेगी। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो अवेयरनेस से करने की एक आदत ही डाल दो। हाँ, जो कुछ भी कर रहे हो, देखो चाय भी पी रहे हो, पता है चाय कैसे पीनी चाहिए, हम लोग कैसे चाय पीते हैं, हाँ जैसे शरीर में पेट्रोल डाल रहे हैं, ऐसे चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय कैसे पीनी चाहिए वो भी एक कला है, हाँ कि एक घूंट मुंह में रखो, हाँ मुंह में ही रखो आधी मिनट एक मिनट, हाँ गर्म मुंह में ही रहे, क्योंकि टेस्ट तो मुंह में ही है, गले से नीचे गया फिर थोड़ी कोई टेस्ट है ना, तो टेस्ट को फील करो, फिर धीरे से उसको स्वॉलो करो, फिर भी रुको, हाँ चाय पीने के बाद भी सारे शरीर में सेंसेशन होते हैं ना, फीलिंग होती है, उस फीलिंग को भी अनुभव करो कि सारे शरीर में क्या सेंसेशन हो रहे हैं, उसमें भी आधी मिनट उसका पूरा आनंद लो, और फिर भले दूसरा घूंट लो। हाँ ऐसा करेंगे ना तो 4 घूंट में भी आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, पूरा 1 कप चाय पीने से जो संतोष मिलता है ना वो 3-4 घूंट में ही मिल जाएगा। तो सारा कार्य ऐसे, चलना ये तो एक बात बताई, चलना फिरना उठना बैठना सब अवेयरनेस से कार्य करो, तो यही ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। ध्यान क्या है, अंतर मन की यात्रा है। तो अंतर्मुखी होने के लिए यह अवेयरनेस सबसे जरूरी है, और जब एक आप अंतर्मन की यात्रा करेंगे तो अंदर में जो अखूट खजाना है उसका पूरा अनुभव कर सकेंगे। हाँ इतनी खुशी इतना आनंद हमारे अंदर है कि सदा के लिए वो चलता रहे, और फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अंदर की शांति का अगर आपने एक बार अनुभव कर लिया तो स्वाभाविक बात है कि आप क्रोध से मुक्त हो सकेंगे। जो उपराम उठने की बात की, या सबसे क्रोध पर विजय प्राप्त करना सही नहीं है, विजय प्राप्त करना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, हार्ड वर्क होगा, परंतु ऊपर उठ गए आप तो कैसे नीचे की चीजें छोटी दिखाई देती है। तो ऐसे ही जीवन में भी हम अपनी चेतना को ऊपर उठा लेते हैं तो किसी ने झूठ बोला, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ, और कोई समस्या आई हो तो आपको छोटी मोटी समस्या आएगी ना, क्रोध आने के बदले उल्टा अंदर में हंसी आएगी कि यह छोटी सी बात है ना। लोगों को भी आश्चर्य होगा। दिल्ली में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, कई समय पहले की बात है ना, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में आए, और थोड़े ही समय में पहले तो उनको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन थोड़े ही समय में उनमें परिवर्तन आ गया। तो जो ऑफिस के लोग थे वो भी सेंटर पर आए और कहा, बहन जी ये जो हमारा ऑफिसर है उसको जरूर पकड़ के रखना। तो मैंने कहा, क्या बात है क्यों पकड़ना है? तो कहा, ऐसे पकड़ना नहीं, जरूर वो आपके पास आता रहे, हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा है। पहले तो जब वो आता था ना तो हमको लगता था काल आ गया, हाँ इतने हम सब डरते थे, लेकिन अभी वो ऑफिस में आते तो हमको लगता है कि हमारा बाप आया है, हमारा पिता आया है। ऐसे प्यार से जब से आपके पास आने लगा है, प्यार से व्यवहार करने लगा है, तो कैसे हुआ, कुछ समझाया नहीं, ऑटोमेटिक ही अंतर्मन की यात्रा हुई, अंतर्मुखी हुए तो ऑटोमेटिक ये बात आ गई। तो इसे आप भी ये कोशिश करना कि मूल को फाइंड आउट करना प्रामाणिकता से, और फिर ये जागृति का अभ्यास करके देखो ऑटोमेटिक क्रोध के मूल को आप समाप्त कर सकेंगे। अच्छा कुछ पूछना है? हाँ जी
डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बचपन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं,
हाँ,
तो जिनको साइकिक इम्प्रेशंस कहते हैं,
जी,
तो उन इम्प्रेशंस का जो पर्सनैलिटी क्रिएट एंगर का बन जाता है, डज इट हैव एनी रिलेशन?
या इट कैन, हमें सचमुच ऐसा हो सकता है।
हाउ मच?
नहीं, इट कैन बी यू नो मेजर फैक्टर ऑल्सो। अभी हम उसको कितना इम्पोर्टेंस देते उसके ऊपर है ना। कभी भी आपके सामने कुछ अन्याय हुआ है बचपन में ना, और उससे आप डिस्टर्ब हो गए, और वही अगर आपकी पर्सनालिटी का एक मेजर फैक्टर है तो सदैव आपको गवर्न करेगा। एक तो कोई विशेष व्यक्ति के प्रति नफरत हो सकती है आपको, है ना, कोई भी, सपोज कि भाई आपके पिता ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो जो भी फादर फिगर्स है उनके प्रति आपको डिस्टर्बेंस होगा। उनके जैसा जिनका चेहरा है, उनके जैसी हाइट है, उससे भी ऑटोमेटिकली जो हमारा सबकॉन्शियस है उस चीज को कोरिलेट करेगा, और ऐसे व्यक्ति को देख के ही शायद आपको अंदर में हार्ट बीट बढ़ जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ऐसे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसके, लेकिन आप अभी है ना हमको लॉजिकली समझा कि उसको इरेज भी हम कर सकते, वे तो चाइल्डहुड में हुआ है शायद, है ना, उनका भी कहीं रीति से वो भी राइट थे, शायद मेरी गलती थी, हो सकता है कि उन्होंने उनका प्रॉब्लम मेरे पर प्रोजेक्ट किया, है ना। एंगर जैसे कहते हैं प्रोजेक्शन भी होता है, आपको और किसी पर गुस्सा है लेकिन उस पर आप गुस्सा कर नहीं सकते। ऐसे कई किस्से हैं कि भी ऑफिस में बॉस पर गुस्सा आता है लेकिन हम बॉस पर तो गुस्सा नहीं कर सकते, तो क्या करते, घर आके बच्चों को डांटते हैं, है ना, पत्नी के साथ झगड़ पड़ते हैं, तो ऐसे वो प्रोजेक्शन भी हो सकता है। कोई रीति से लॉजिकली समझाओ तो चाइल्डहुड इम्प्रेशन खत्म हो सकती है।
तो चलो, अभी ब्रह्मा कुमारी के विषय में कुछ कह रहे थे कि कोई बास आया उसका बड़ा परिवर्तन हो गया, तो ऐसा क्या सिखाया जाता है वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जिससे परिवर्तन हो जाता?
अभी एक तो देखिए कि ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है, जो मैंने सिखाया ना आपको कि क्रोध के कारण क्या है, क्रोध क्यों आता है, वो नहीं सिखाते। वहां तो ध्यान की विधि सिखाते, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते, और जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को सीखते हैं तो ऑटोमेटिक उस बात को आप कोरिलेट करते हैं। मैंने भी जो कुछ बातें बताया ना कि एक हर एक व्यक्ति यूनिक है, क्यों मैं चाहता हूं कि वही मेरी इच्छा अनुसार काम करे, आध्यात्मिक ज्ञान से वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ध्यान से नेचुरली आपका जो मूल गुण है, आत्मा का मूल गुण है शांति, प्रेम, आनंद, उसको आप अनुभव करते हैं तो क्रोध है वो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। ओम शांति।